इस साल नेशनल स्किल्स कमीशन की जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले कुछ सालों में वृद्ध देखभाल श्रमिकों की मांग में 40% की वृद्धि होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में अगले 5 वर्षों में वृद्ध और विकलांगता देखभाल क्षेत्र में 54,000 से अधिक नौकरियां और लगभग 50,000 नर्सों को भरने की आवश्यकता होगी। इसी के चलते हाल ही में सरकार ने एक नए एज्ड केयर लेबर एग्रीमेंट की घोषणा की, जिसमें नर्सिंग सपोर्ट वर्कर्स, पर्सनल केयर असिस्टेंट और वृद्ध या विकलांग देखभाल कर्ताओं को ऑस्ट्रेलियाई वीजा के लिए कुछ छूट दी गई है। इसी विषय पर हमने सुमन दुआ, जो एक माइग्रेशन एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी।
धन्यवाद नताशा जी, नमस्ते आपको भी और SBS के सारे लिसनर्स को।
सुमन जी, हम आपसे आज एज्ड केयर लेबर एग्रीमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। ये नया एग्रीमेंट अभी सरकार ने अनाउंस किया है, इसके बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं?
जी नताशा जी, सो ये लेबर एग्रीमेंट का काफी टाइम से इंतजार भी था। डिपार्टमेंट ऑब्वियसली दे नो कि एज केयर जो एरियाज में एज केयर वर्कर्स, नर्सिंग सपोर्ट वर्कर्स, पर्सनल केयर असिस्टेंट्स सबकी कितनी शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है।
जी
और दिस इज बिकॉज के इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक ऐसे वीजा नहीं है जिससे लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। सिर्फ एक डामा था जो अभी भी है, डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट तो है बट
जी
वो सिर्फ 12 रीजन्स में है, सो इट्स वेरी स्पेसिफिक। तो अगर किसी ने जैसे सिडनी है, मेलबर्न या सिटी एरियाज में जो वो डामा रिलेटेड एरियाज नहीं है, अगर उन्होंने एज केयर वर्कर्स को करना है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था। उनको एक अपना स्पेसिफिक लेबर एग्रीमेंट बनाना पड़ता था विच इज लॉट ऑफ वर्क। तो अभी डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक एज केयर का इंडस्ट्री लेबर एग्रीमेंट बना दिया है जो एनी एम्प्लॉयर इन द एज केयर सेक्टर कैन यूज इट एंड स्पॉन्सर वर्कर्स। जो एज केयर इंडस्ट्री लेबर एग्रीमेंट अभी अवेलेबल है, ये एक्सेस करने के लिए उनको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा रेलिवेंट यूनियन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फेडरेशन के साथ। जब वो मेंबर में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर लेंगे, सो दैट मींस कि उन्होंने लेबर एग्रीमेंट रिक्वेस्ट जो है डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ एज केयर इंडस्ट्री लेबर एग्रीमेंट। ये तो इसमें तीन ऑक्यूपेशंस हैं, नर्सिंग सपोर्ट वर्कर, पर्सनल केयर असिस्टेंट, एज्ड और डिसेबिलिटी केयरर। तो मैं इसके कंसेशंस भी बता देती हूँ कि
जी
क्या है,
जी
रिक्वायरमेंट क्या
बताइए।
है। तो इसमें कुछ कंसेशंस मिलेंगे, जैसे एक तो अगर किसी ने 482 वीजा पे काम किया है इस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयर के साथ, उनको 2 साल के बाद 186 वीजा वो लॉन्च कर सकते हैं जो कि परमानेंट वीजा है। सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड इट कि इसमें एक परमानेंट रेजिडेंसी की ऑप्शन होगी इन द फ्यूचर। और अदर गुड थिंग इज कि जो एप्लीकेंट्स हैं जिनको जो वीजा एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लो रखी है, सिर्फ AQF लेवल सर्टिफिकेट 3 उनको चाहिए है एज केयर में, या
जी
हायर एजुकेशन भी हो सकती है एज केयर रिलेटेड क्वालिफिकेशन में, या उनको 12 महीने का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो इन दोनों में से अगर उनके पास कुछ भी है ऑस्ट्रेलिया में, इन दैट केस उनको स्किल्स असेसमेंट भी नहीं चाहिए। बट अगर उनकी क्वालिफिकेशन ओवरसीज से है या वर्क एक्सपीरियंस ओवरसीज से है, इन दैट केस उनको जो एनमैक स्किल्स असेसिंग बॉडी है उनसे स्किल्स असेसमेंट लेनी पड़ेगी। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, सिर्फ IELTS 5 और इक्विवेलेंट चाहिए है।
अच्छा
और अगर उनके पास कुछ कम्युनिटी लैंग्वेजेस का स्किल है, जैसे कुछ हम करते हैं ना नाटी टेस्ट वगैरह करते हैं कि
जी
वी नो अनदर लैंग्वेज, उसमें उनकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, इट्स ओनली IELTS 4.5 और इक्विवेलेंट।
तो ये तो हो गए जो ऑनशोर हैं, जो भारत से अप्लाई कर रहे हैं इस कैटेगरी में, उनको किस बात की कंसेशंस मिल सकते हैं?
इंग्लिश कंसेशन तो देखो है ही है, IELTS उनको सिर्फ 5 चाहिए है, उनको सर्टिफिकेट 3 इन एज केयर क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम और हायर, पर उनको ये है कि एनमैक से अपनी पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट लेनी पड़ेगी फॉर दिस ऑक्यूपेशन, सो विच शुड बी इजी, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट देन ऑफ कोर्स दे नीड अ एम्प्लॉयर हु इज रेडी टू स्पॉन्सर देम। एनुअल सैलरी में भी इसमें बहुत कम रखी है, 51,000 अराउंड 51,000 है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स,
जी
और ऑफ कोर्स दे कैन पे हायर आल्सो बट मतलब कम रखी है वैसे, जैसे आपको पता है कि डिसमेट अभी इंक्रीज भी हो जाएगा जुलाई के बाद, थ्रेशोल्ड बढ़ने वाला है सो इट विल अप्लाई टू दिस। यस
जी और बढ़कर कितनी पहुंच जाएगी ये सैलरी?
आई थिंक अबाउट 70,000।
और कुछ जो ध्यान में रखा जा सकता है जो इसमें इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए?
जी एक्चुअली बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट
जी
इश्यू ये आ रहा है कि सब एम्प्लॉयर्स रेडी नहीं होते हैं कई बारी स्पॉन्सर करने के लिए। तो अगर तो आप काम कर रहे हो, आपके पास सर्टिफिकेट 3 तो सबके पास ही होता है, या 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस भी, मोस्टली एप्लीकेंट्स की तरफ से कोई इश्यू नहीं आ रहा। एप्लीकेंट्स की रिक्वायरमेंट, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं हु आर एलिजिबल, बट देन दे हैव टू मेक श्योर कि एम्प्लॉयर आगे से रेडी है उनको स्पॉन्सर करने के लिए। सो अगर तो आप ऑलरेडी इस पाथ पे हैं, देन यू कैन ट्राई टू गेट दिस स्पॉन्सरशिप। बट व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ दिस एज केयर लेबर एग्रीमेंट, जो हमें इंक्वायरी आ रही है, पीपल वॉन्ट टू नाउ डू दिस कोर्स एंड दे वॉन्ट टू वर्क इन दिस सेक्टर, विच इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज देर आर अदर पाथवेज। अगर आपको पढ़ाई से कुछ आगे परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, यू नो थ्रू स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, देर
जी
आर अदर कोर्सेज जहाँ से आप यू नो पॉइंट्स टेस्टेड वीजा, जैसे आपको पता है, जो कि एक इजियर पाथवे है, आप अपनी स्किल्स से परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। बट इस पाथवे से अगर आप जा रहे हैं, देन यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आपका एम्प्लॉयर आगे से रेडी हो। तो 2 साल आप अगर 482 पे उनके साथ काम कर लेते हैं, तो फिर आगे वो आपको 186 के लिए भी नॉमिनेट कर सकते हैं, विच इज द परमानेंट रेजिडेंसी वीजा। अगर आप स्पेसिफिकली इस पाथ की तरफ जा रहे हो कि आप सोचो कि अब मैं पढ़ाई करूंगा और फिर मैं इसमें इस सेक्टर में जॉब लूंगा, फिर मैं स्पॉन्सर ढूंढूंगा, तो दैट इज नॉट रियली अ वेरी रिकमेंडेड पाथवे, क्योंकि अगर कुछ बेटर ऑप्शंस हैं, देन व्हाई वुड यू गो हियर। आप ये तभी देखो अगर आप ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयर से आप बात करो कि अगर वो रेडी हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए, देन डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन।